ओम शांति। स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन तपस्या भट्टी, जिसका विशेष आयोजन शांति वन में विशेष माताओं के लिए किया गया है। मैं सोच रही थी कि माताएं बड़ी लक्की हैं। ये तो हम जानते हैं कि विधि पूर्वक इसका उद्घाटन आज शाम को है, लेकिन आप इतने पद्मा पदम भाग्यशाली हैं जो फरिश्ता उड़ते उड़ते लंदन से यहाँ पर पहुंच गया और वो अभी आपके बीच है, और वो है हमारी आदरणीय जयंती बहन। आपको बहुत ही लकी चांस मिला है। मुझे याद आता है 1968 जब जयंती बेन साकार बाबा के सामने थी। जयंती बेन को शायद ये ध्यान नहीं होगा, लेकिन मुझे वो दिन कभी नहीं भूलता। जयंती बेन ऐसे बाबा के सामने खड़ी है और मैं बहुत छोटी थी और मैं बाबा के सामने थी और बाबा जयंती बेन से बात कर रहे थे। और ये भी याद है आपके साथ ज्योति बहन भी थी, राइट? ये जून 1968 की बात है। और जब से मैंने इनको देखा, क्योंकि आपने प्यारे साकार बाबा की पालना ली और कैसे कई जो मुरलियां चली, किस तरह से बाबा के मन में आता था कि कैसे बच्ची जाएगी और जाके विदेश में मैसेज देगी, मुझे वो भी बाबा के शब्द याद आते हैं। और जब भी उनको देखते हैं तो देखते ही जो मेरे मन की फीलिंग्स हैं, आपका चलन, आपका चेहरा और आपकी बोल, तीनों से ही आध्यात्म की पहचान मिलती है। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी को देखते ही आध्यात्म क्या होता है वो सोचने लगे और वो सोचे कि मुझे आध्यात्मिकता को जानना है, ऐसी पहचान आपके चेहरे से दिखाई देती है। दूसरी बात, विशेष रूप से आप बाबा के वो अनमोल रत्न हैं जिन्हें बाबा ने स्वयं फ्लाइंग एंजल का नाम दिया है। आपने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, विश्व भर में भ्रमण करती रहती हैं, और प्यारे बाबा ने स्वयं 1969 में आपको विदेश सेवा के निमित्त लंदन में भेजा और आप वर्तमान समय यूरोप और मिडिल ईस्ट की डायरेक्टर हैं और साथ ही साथ जिनेवा यूनाइटेड नेशंस में ब्रह्मा कुमारीज का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन फिर भी शॉर्ट में इतना ही कहूंगी कि जयंती बहन आज माताओं की भट्टी के लिए एक विशेष सौगात है, तो वो अपने अनमोल बोल जो आज का विषय है दृष्टि वृत्ति और स्मृति, इस पर अपना उद्बोधन हमारे सामने रखेंगी आदरणीय जयंती बहन।
ओम शांति। शक्ति सेना का मिलन का बहुत ही सुंदर अनुभव हो रहा। अनुभव तो क्या, पहले तो दर्शन हो रहा कि बाबा की कितनी विशाल सेना है। तो आप सब अपने लिए तालियां बजाओ। क्यों? क्योंकि बाबा के ये जो महावाक्य है कि माताएं सारे जग का उद्धार करने वाली, माताएं ही भारत का स्वर्ग का द्वार खोलने वाली, तो ये सब प्रैक्टिकल आप सभी यहाँ बैठे हैं, ये तो बहुत बहुत भाग्य की बात है। दादी जानकी से पूछते तो दादी कहती कि सतयुग में बाबा ने भी पूछा था कि आप राजा बनेंगे या रानी बनेंगे, या लंदन में भी दादी से कभी कभी ये शुरुआत में, आजकल तो नहीं पूछते परंतु शुरू शुरू में जब सब विदेशी नए थे ज्ञान में, तो उस समय बाबा से पूछे, दादी से पूछते थे कि दादी आप लक्ष्मी बनेंगे या नारायण बनेंगे, तो दादी का क्या उत्तर होता था, संगम युग में माता बनना बहुत ही अच्छा, बाकी सारे कलप में तो पुरुषों ने ही राज किया है। तो अभी संगम युग में माता अथवा बहन बनना ये तो भाग्य की बात है। ड्रामा अनुसार बाबा ने कलश माताओं के सिर के ऊपर रखा है और माताओं ने ही जब ही माता माता बनती, कुमारी माता बनती, तो उसी समय से ही माता का तीन पार्ट बजना शुरू होता। जैसे आज बाबा कई बार कह रहे थे कि बाप बाप भी है परंतु सुप्रीम शिक्षक है, परम शिक्षक है। इसी तरह से माता भी जैसे ही बच्चा जन्म लेता, माँ का तो रूप प्यार का तो है ही, परंतु साथ साथ माँ ही शिक्षक भी बन जाती, क्योंकि जो संस्कार उस समय बच्चे में आते हैं तो वही संस्कार के आधार से उसकी जीवन आगे बनती है। तो माँ टीचर भी है और भारत में तो कहते हैं कि पहला गुरु तो माता ही है। तो ये सब तो आपको संगम युग में जो माताओं ने सेवा की है उसका यादगार कलयुग के अंत तक चलता रहता, क्योंकि लौकिक में तो आजकल माता टीचर गुरु कहाँ होती है। माँ का ही अच्छी तरह से पाठ नहीं बजा पाती, परंतु संगम युग में माताओं ने टीचर का पाठ और फिर साथ साथ रास्ता दिखाने वाले गुरु का पाठ भी बहुत ही अच्छी तरह से बजाया है। तो उसमें ये तो हम जानते हैं कि बाबा कहते हैं कि पहले करो और फिर बोलो। दूसरे स्थानों पर पंडित लोग बोलते हैं और फिर कोई और करने वाला होता, पंडित कभी करता कभी ना भी करे, ऐसे भी होता। परंतु बाबा के पास दादी हमेशा हमें बताती कि साकार बाबा कहते थे बच्चे करो पहले बोलो बाद में, बोलना और शायद न करना वो अलग हो जाता, परंतु करो और शांति से अपनी आंतरिक शक्ति से अंतर्मुखी अवस्था से बहुत अच्छी तरह से करते चलो, तो फिर बाद में जो आप बोलेंगे सुनने वालों पर भी प्रभाव पड़ेगा और वो भी मानेंगे कि हाँ जो आप कह रहे हैं सच्ची बात कह रहे हैं। तो हमें करना क्या है? आज के मुरली अनुसार हमें पुण्य आत्मा बनना है, राइट? और पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? बाबा ने कहा कि एक है पतितों को पावन बनाने वाला, एक है सद्गति दाता, एक ही है जो आपको पतित से पावन बना करके, पुण्य बना करके वापस घर भी ले जाएंगे और फिर स्वर्ग में भी भेजेंगे। तो अभी यदि हमें ये लक्ष्य बना है कि हमें पुण्य आत्मा बनना है, तो पुण्य आत्मा बनने के लिए हम किस तरह से अपने अंदर परिवर्तन करें, ये तो आप लोग जानते हैं। बाबा कहते हैं कि जैसे वृत्ति वैसे स्मृति, वैसी दृष्टि और कृति और फिर सृष्टि। तो शुरुआत कहाँ होती? अपने ही अंदर वृत्ति के। फिर जब कोई भी बात वृत्ति में आती है, सूक्ष्म बात है क्योंकि हम तुरंत अपनी वृत्ति को देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, परंतु जब हमको ये अभ्यास होने लगता कि हम शांति से देखे कि मेरे वृत्ति के अंदर क्या है, तो फिर कई बातें देखने को मिलती और फिर जितना जितना हम उसको स्वच्छ बनाते जाते हैं, साफ करते जाते हैं। आज बाबा ने कहा अपनी भावनाओं को सदा ही शुभ बना करके रखो। शायद तीन दिन से ये टॉपिक चल रही है मुरली के अंदर, मनसा और साथ साथ वाचा। सिर्फ वाचा से सेवा की सफलता नहीं मिलेंगी, सिर्फ मनसा से आप कोने में बैठ जाओ ऐसे भी बाबा नहीं चाहते हैं, परंतु मन और वचन दोनों ही साथ साथ चलते रहे तो न सिर्फ सफलता होगी सेवा में, परंतु आज तो बाबा ने कहा कि जो संगठन है वो संगठन की शक्ति बहुत मजबूत हो जाएंगे। और फिर जब हमारे वृत्ति में ये अच्छी अच्छी भावनाएं होंगी कि हमें नस्र बाबा ने कहा कि शुभ भावना रखो परंतु साथ साथ शुभ दुआएं ही दो, तो ये कहाँ काम चल रहा है? अपनी वृत्ति के अंदर ये हम भावना रखते हैं कि हाँ हरेक के प्रति हमारी शुभ भावना हो, तो आप सोचो कि अमृत वेले के बाद, अमृत वेले तो एक बाबा दूसरा न कोई, उसमें और कुछ प्लान करने की बात नहीं है, परंतु बाबा का प्लान देखते चलने की बात है। परंतु अमृत वेला तो बाबा के साथ योग लगाया, बहुत अच्छी तरह से बाबा से लाइट और माइट की शक्ति ली और फिर वो फैलाने में भी बाबा के साथ साथ रहे। फिर उसके बाद हमें और क्या काम करना है? अपनी वृत्ति को साफ करना है, बहुत अच्छी तरह से अपने मन के अंदर वृत्ति है। वैसे तो शब्द जो आता है वृतांत, वृत्ति का अंत आता है वृतांत, मींस जो आपके अंदर बात चल रही होंगी वो फिर उसका रिजल्ट भी आप देखेंगे बाहर में, वो वृतांत सामने आएगा, वो सिचुएशन सामने आएंगी। तो अपनी वृत्ति में हमें क्या रखना है? अभी बस हरेक के प्रति शुभ भावना। बहुत वर्ष पहले एक विदेशी बहन है, आज तक भी वो ज्ञान में है, परंतु ये शुरुआत की बात है। तो उसका जो लौकिक रहन सहन था कुछ अलग ही था। फिर बाबा के पास आई, बहुत प्यार से सभी बातें स्वीकार की और अपने जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन लाया। परंतु मैंने देखा कि हमारे साथ इतना कोई इतना नजदीक का संबंध नहीं था, और उस समय तो विदेश में छोटा सा ही परिवार था, तो छोटे से परिवार में तो जल्दी पता चलता है इन बातों का। तो मुझे ये संकल्प नहीं उठा कि मैं उससे पूछूं कि इस बहन का मेरे साथ इतना नजदीक का इतना अच्छा संबंध क्यों नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर का हलो हलो करने का है। परंतु मैंने सोचा कि मैं अंदर जा करके देखूं कि मेरे अंदर उसके प्रति क्या है। तो मैंने देखा कि मेरे अंदर जो मेरी वृत्ति बनी हुई थी उसके प्रति, वो ये था कि वो अभी तक भी कुछ लौकिक बातों में फंसी हुई है, इतना वो ज्ञान में आगे नहीं आई है। तो जब मुझे ये बात का पता चला कि मेरी वृत्ति में ये भावना बैठ गई है, तो मुझे समझ में आया कि उसको मेरे सामने आकर के नजदीक का संबंध रखने में क्यों कठिनाई हो रही। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अपने से पूछा कि वृत्ति में क्या है जो इसको पहुंच रहा है, जिस कारण से थोड़ा वो दूर रहती। तो वृत्ति में यही बात थी कि पूर्व की, कि जब पहले ये ज्ञान में चली तो वो थोड़ा मेरी वृत्ति में इम्प्रेशन रहा हुआ था। तो मैंने कॉन्शियसली अपनी बुद्धि से उसके प्रति अपनी भावना बदली की। क्यों? क्योंकि अपनी भावनाओं को चेक करते हैं तो पता चलता है कि क्या मेरे भावना में बैठा हुआ है। और वैसे तो आम तौर से चलते चलो तो पता नहीं चलता, परंतु जब कोई भी कारण से थोड़ी चेकिंग करते हैं तो अवश्य पता चलता है। तो मैंने देखा कि अभी तक मेरे वृत्ति में उसके प्रति वो जो थोड़े वर्ष पहले की बात थी, 2-3 साल पहले की बात थी, वो ही मैंने अभी तक अपने पास रख ली है। तो मैंने बहुत कॉन्शियसली ये एक निर्णय किया अपने लिए कि मैं इसका अच्छाई का तरफ देखूं। और हर व्यक्ति को कलयुग के अंत में तो नेचुरली कहेंगे कुछ अच्छे कुछ ना भी अच्छे संस्कार होंगे। बाबा के ब्राह्मण बच्चों के लिए भी यही बात है कि कलयुग के अंत में जैसे बाबा ने कहा आज कि एक भी पुण्य आत्मा नहीं, बाबा ऊपर से बैठ के देख रहे हैं। और कितना भी कोई पोजीशन वाला हो, पढ़ा लिखा हो, कितना भी वो भगत जन हो, परंतु बाबा की दृष्टि में अभी तक तो कलयुग का ही है। तो उस हिसाब से कहेंगे कि हाँ, बाबा ने कहा कि अब हर आत्मा को पुरुषार्थ करके पुण्य आत्मा बनना है। तो यदि हम उस घड़ी जानते हुए भी कि इस आत्मा के अंदर क्या क्या नुक्स है, यदि हम कॉन्शियसली ये सोचे कि इस आत्मा के अंदर क्या क्या गुण है, तो बहुत फर्क हो सकता। परंतु नहीं तो पुरानी इम्प्रेशन हमारी चलती रहे और फिर अनेक और मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहे, क्योंकि हमने उन्हों का शुरू से ही अच्छी तरह से भाव नहीं समझा है, तो इससे बहुत हम बच जाते। एनर्जी जो खर्च होती इन सब बातों का दिमाग से सोचने की या फिर कुछ कदम उठाने के लिए, बहुत टाइम और एनर्जी वेस्ट होती। तो तभी फिर यदि हम अच्छाई को ही देखें और हर एक आत्मा के प्रति अच्छी भावना रखें, जैसे बाबा जब कमलेश बहन हमारा परिचय दे रही थी, तो मुझे याद आया कि जब मैं फर्स्ट टाइम आबू में आई थी बाबा से, तो मैं 1957 में नवंबर में दिल्ली में मिली। परंतु विदेश रहते थे तो आना जाना चलता रहता था, तो ज्यादा समय उस समय नहीं रहे। परंतु बीच बीच में जब हम आते रहते थे तो बाबा के साथ मधुबन में मुलाकात होती थी। और 1966 में जब मैं फर्स्ट टाइम माउंट आबू आई थी और बाबा के सामने आई, तो बाबा ने तुरंत ही अपनी दृष्टि से ऐसे आत्मा को ऊंचा अनुभव कराया जैसे कि परम धाम की यात्रा बाबा ने करा दी। और फिर साथ साथ बाबा के ऐसे महावाक्य होते थे जो अपने लिए हम सोचते हैं कि मैं शायद करूं या ना भी करूं, परंतु बाबा ने मुझे कहा है तो बाबा के महावाक्य को लेकर के वो हिम्मत भी आती, वो उमंग उत्साह भी आता, बाबा हर प्रकार से शक्ति भी देता। तो बाबा ने जिस तरह से एक्सटर्नल रीति से बाबा क्या देख रहे थे कि वो छोटी सी कुमारी है और सफेद कपड़े भी नहीं डाले हुए थे उस समय, और बाल भी जैसे विदेश का होता वैसे ही था, तो बाबा ने ये बातें नहीं देखी। बाबा ने देखा हमारे प्रेम को, प्यार को, हमारे दिल को, और फिर बाबा ने उस अनुसार जो कुछ महावाक्य उच्चारण किए बाबा ने किए। यदि बाबा उस घड़ी स्थूल बातें देखता था तो बाबा के मुख से ऐसे वरदानी शब्द नहीं निकल सकते थे, क्योंकि जो हमारे मुख से बात निकल रही है इसका मतलब कि हमारे मन में हमने उसको रख करके संभाल करके यूज किया है या नहीं किया है वो हर एक जाने, परंतु यहाँ पर हमने सब कुछ जमा करके रखा है। और न सिर्फ 63 जन्म परंतु 84 जन्म। तो बाबा ने जिस तरह से आत्मा को ऊंचा उठाने का पाठ बजाया और बातें कुछ नहीं देखी, तो अभी यदि हमें भी बाप समान बनना है, बाबा को फॉलो करना है, तो हमें भी अपनी वृत्ति हर आत्मा के प्रति बहुत ऊंची, बहुत श्रेष्ठ रखनी होगी। अपनी वृत्ति को साफ करें, एक तो अपने को समझाएं कि मेरी दृष्टि किस प्रकार से होनी चाहिए, परंतु शुरू होता है वृत्ति से, और जैसी वृत्ति होंगी वैसी मेरी आंखें देखेंगी। आप लोगों को ये अनुभव है कि जैसे वृत्ति होंगी वैसे वो सर्कमस्टेंसेस बनेगा। किसको इस बात का अनुभव है? थोड़ों को। ओके, तो आप एक्सपेरिमेंट करके देखना और आप देखेंगे कि प्रैक्टिकल ऐसे ही होता। तो अपनी वृत्ति में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना, अच्छाई को देखना और उससे अपना टाइम और एनर्जी भी बहुत बच जाता। विदेश में हमेशा कहते हैं टाइम इज मनी, अपना समय ही धन है। और सच्ची बात यही है कि जिस भी बात पर हमने ध्यान दिया, अपना ध्यान दिया, तो वो बात फिर उसकी रिजल्ट बहुत अच्छी निकलती। और आपने कोई बात पर ध्यान नहीं दिया, आपका ध्यान कहीं और जगह चला गया, तो वो जो बात है वो बेचारा रुक जाता, आगे नहीं बढ़ता। तो फिर एक तो कॉन्शियसली मुझे क्या देखना चाहिए, अपनी वृत्ति में क्या जमा करना चाहिए, और फिर साथ साथ बाबा का प्यार। जितना हमने बाबा का प्यार लिया होगा उतना हम अपने वृत्ति को स्वच्छ बना करके रख सकेंगे। और यदि हमने बाबा का प्यार का अनुभव नहीं किया है कोई भी कारण से, हम देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास नहीं किया, या हमने सवेरे अमृत वेला अच्छी तरह से नहीं ध्यान से किया, जो भी बाबा की आज्ञाएं हैं, बेसिक अपनी जीवन की बातें, यदि वो हमने पालन नहीं की होती तो फिर हमें बाबा का प्यार का अनुभव नहीं हो पाता। ऐसे हमारी स्थिति हो कि जब हम बाबा के सामने बैठे, और बाबा के सामने बैठने का तो भाव आप समझ सकती हैं, मधुबन में तो विशेष बाबा के सामने बैठने का मौका मिलता, परंतु हम जब अपनी बुद्धि में बाबा की याद में बुद्धि को एकाग्र करते तो वो है बाबा के सामने बैठना, या साकार बाबा का चित्र भी कहां पर भी हो, जहां भी मेडिटेशन रूम है, यहां है, कहां भी है, आपको ऐसे अनुभव हो कि बाबा मुझे दृष्टि दे रहा, ऐसे होता ना, बाबा मुझे दृष्टि दे रहा। और जब बाबा मुझे दृष्टि दे रहा उस समय मुझे क्या फीलिंग आती है बाबा की दृष्टि से? क्या मुझे ऐसे अनुभव होता कि बाबा मुझे प्यार से देख रहा है और मुझे प्यार दे रहा है, या मेरे मन के अंदर कुछ खुटखुट हो रही है? यदि श्रीमत अनुसार कुछ भी कार्य न चला होगा तो जरूर अपना विवेक खाएंगा और खुटखुट होती रहेंगी। तो फिर उस घड़ी ऐसे नहीं हम कह सकेंगे कि हाँ मुझे बाबा का प्यार का बहुत अच्छा अनुभव हुआ। तो अपनी जीवन ऐसे बना करके रखें जिसमें हमें बाबा का प्यार सदा अनुभव होता रहे, और उस प्यार से आत्मा बहुत स्वच्छ बन जाती है, अपनी वृत्ति में परिवर्तन हो जाता, अपनी वृत्ति बाबा के प्रेम की शक्ति के आधार से बिल्कुल शुभ भावना हरेक के प्रति सहज रख पाती। और यदि हम इस तरह से अभ्यास करते हैं तो आप सोचो हमारी स्मृति क्या होंगी, हमारी स्मृति तो बहुत ऊंची बहुत श्रेष्ठ होंगी। हमारी स्मृति में यही होगा कि हम किसके हैं और हमें क्या करना है, बाबा ने हमें कौन सा काम दिया हुआ है, बाप कल्याणकारी तो माताएं कौन, माताएं तो पहले से ही सब कुछ अपना त्याग करके सेवा के लिए समर्पण करने की आदत होती, लौकिक हिसाब से माता के लिए ही कहेंगे कि त्याग और सेवा। लौकिक माताओं को तो तपस्या का तो नहीं मालूम, परंतु त्याग तो उनके अंदर जबरदस्त होता ही है। आज तक भी भारत में तो ये रीत रस्म है। विदेश की माताओं के लिए, आज के जमाने वाली माताओं के लिए हम ये नहीं कहेंगे कि वो त्याग वृत्ति वाली है, उनका तो कुछ और ही हिसाब है, परंतु भारत की माताओं के लिए तो कहेंगे कि हाँ, उनके अंदर त्याग वृत्ति एक स्वाभाविक है और सेवा भावना भी बिल्कुल पक्का पक्का है। ताकि तपस्या का तो बाबा के बच्चों को मालूम है, तो जबकि अभी बाबा के बच्चे बने हैं तो हमारी वृत्ति के अंदर और स्मृति के अंदर सेवा भाव अथवा कल्याण करने की भावना, आप देखेंगे कि जब हम सेवा भाव कहते हैं और आजकल ये बाबा के मूल्यों में वरदानों में क्लियर हो रहा है कि मन और वचन, मन और वचन, सिर्फ वचन से काम नहीं बनता, परंतु जो आपकी स्मृति में अथवा जो आपके मन में होगा, मन में जो संकल्प आते हैं उससे ही हमारी स्मृति बनती, तो जो हमारी स्मृति में है उसमें क्या क्या है? उसमें है कि हमें हर आत्मा को कुछ न कुछ मदद देनी है, सहयोग देना है। क्यों? क्योंकि हमें सबका कल्याण करना है। भावना ये होंगी, वृत्ति में स्मृति में यही बात होंगी। और जबकि हमारे स्मृति में ये बात है कि वो कौन और मैं कौन, मुझे क्या करना है, तो हमारी स्मृति ऑटोमेटिकली और सब बातों से नष्ट मोहा स्मृति अपना हो जाती। जबकि गीता के ये अंतिम वाक्य है, 18 चैप्टर का ये फाइनल स्टेज अर्जुन का हम सुनते हैं, नष्ट मोहा और स्मृति लपता। स्मृति में सिर्फ बाबा, बाबा ही बाबा। और स्मृति में जबकि हमने जीवन भर जितना भी जीवन का समय रहा है, हरेक को मालूम नहीं होता, परंतु बाबा ने कहा कि कम समय है, तो अब जितना भी समय है यदि हम अपनी स्मृति में बाबा और बाबा का कार्य रखते हैं तो फिर हमारी स्मृति सहज सहज बाबा के साथ जुटी रहती। दिन भर आप ये सोचो कि मैं गृहस्थी हूं तो आपकी स्थिति क्या बनेगी? मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, मुझे वो काम करना है। और गृहस्थी का खास करके माता का तो पाठ वही होता, सारा दिन बिजी 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 बिजी। अभी एक भाई अपना अनुभव सुना रहा था, उसकी आयु शायद करीब 35 वर्ष की होंगी, ज्यादा बड़ी नहीं है, तो कहता है कि जब जब मैं अपने फ्रेंड के घर में जाता था, कोई भी समय, सवेरा हो, दोपहर का हो, शाम का हो, परंतु माता भंडारे में ही होती थी। उसको इतना काम रहता था, और भंडारे से बाहर आती थी खिलाने के लिए, फिर वापस भंडारे में ही जाती थी। तो कहता था कि मुझे संकल्प आया कि क्या ये यही काम करती और कुछ काम करती ही नहीं है। तो जब मेरा फ्रेंड बड़ा हुआ और उसने अपना अलग घर लिया दूसरे शहर में, तो उसने माँ को बुलाया, और उसकी माँ जब उसके घर पे गई और उसको फ्रीडम मिली, तो उसको एक अपनी नई प्रकार की स्मृति आने लगी कि फ्रीडम क्या होती। तब तक उसको मालूम नहीं था, उसको यही था कि यही मुझे काम करना है और यही मुझे यहाँ रुकना है। और जब उसको अपनी फ्रीडम का अनुभव होने लगा तो उसको ये संकल्प आया कि ये जीवन तो बहुत अच्छी, और फिर अपना टाइम खुद ही अपने आप चेंज करने लगे। पहले तो उसी बंधन में थी, परंतु बंधन सिर्फ काम का बंधन नहीं था, अपने मन का बंधन था। और फिर जब उसको एक बारी फ्रीडम का अनुभव हुआ, थोड़े दिन के लिए ही आई, परंतु फिर जब वापस अपने घर गई तो उसने ऐसे अपना टाइम टेबल बनाया जो बीच बीच में फ्री हो सकती। तो मैं ये क्यों कहानी सुना रही हूँ, क्योंकि जिसकी बुद्धि ग्रस्ती बुद्धि होंगी, हमेशा कुछ न कुछ कुछ न कुछ काम चलता ही रहेगा और कभी वो बंद होने वाला ही नहीं है, वो इस बंधन में बैठे रहेंगे। परंतु बाबा ने माताओं को क्या बना दिया, गृहस्थी से माता को बना लिया स्टूडेंट। भारत में तो ये सिस्टम ही नहीं होती थी कि माता स्टूडेंट बने, राइट? विदेश में तो फिर भी आजकल हर बात का फैशन हो गया है, तो माता भी फिर यूनिवर्सिटी में जाकर के स्टडी करती। परंतु भारत में माता की बुद्धि को परिवर्तन करने के लिए, उसकी वृत्ति स्मृति को और ऊंचा बनाने के लिए बाबा ने माता को कह दिया कि तुम तो मेरी बेटी हो, तुम तो बच्ची हो, तुम ईश्वर की संतान हो। ये नहीं सोचो कि मैं माता हूँ, परंतु ये सोचो कि मैं बाबा की बच्ची हूँ। और फिर साथ साथ ये भी आप सोचो कि मैं स्टूडेंट हूँ। बाप को पहचाना तो बाप तो टीचर भी है। तो जब स्टूडेंट लाइफ का अनुभव होता तो फिर एक तो फ्रीडम होती और दूसरा सीखने की भावना बनी रहती। तो जिस समय आप मुरली क्लास में आते हो, आप स्टूडेंट की भावना से आएंगे, उस वृत्ति और स्मृति से आएंगे कि मैं तो स्टूडेंट हूं, तो उस घड़ी आपको कोई भी और बात खींच नहीं सकती। स्टूडेंट को अपने स्टडी पर ध्यान देना होता और बातें पीछे। फिर बेशक शाम को घर पे बच्चा जाता और फिर देखता है कि यहाँ भी मदद करनी चाहिए, वहां भी कुछ करना चाहिए, कुछ भी वो करे वो अलग बात, परंतु सवेरे का टाइम स्टूडेंट। दादी ने लंदन में माताओं को इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है, जो यज्ञ माताएं हैं बाबा के भंडारे की सेवा करती, तो शुरू शुरू से ही दादी की खुद की आदत थी। क्यों? क्योंकि दादी को हर प्रकार से अनुभव है, बनाने खाना बनाने का भी, खिलाने का भी, दवाइयां देने का भी, नर्स का भी पार्ट, टीचर का भी पार्ट, हर प्रकार से दादी को अनुभव है। तो दादी जब हमारे पास कोई माता नहीं थी मदद के लिए, तो दादी और हम और सुदेश बहन साथ थे, तो हम सब मदद करके बनाते थे। परंतु दादी कभी भी प्रायोरिटी देती थी क्लास को, या कोई भी स्टूडेंट आया है उसको कोर्स कराने का, तो दादी कहती थी आप जाकर के उनको पहले कोर्स कराओ, फिर सब बातें पीछे। एक बारी दादी ने कहा कि आजकल गैस का फैशन निकला है, पहले तो लकड़ियां इकट्ठी करो, लकड़ियां को जलाओ, आदाद आदाद, आप लंबी कहानी थी, परंतु आजकल सिर्फ गैस को ऑन कर दो तो बहुत सहज है। तो दादी ने एक दिन पूछा कि बाबा ने ड्रामा अनुसार ये क्यों सिस्टम बनी है गैस की, ताकि आपको फ्रीडम हो, ऑन भी करो और जब कोई स्टूडेंट आए उसको ऑफ भी करो, जाकर के उनको कोर्स कराओ। तो मतलब कि माताओं को दादी ने ऐसे फिक्स किया कि गुरुवार का भोग है या ब्रह्मा भोजन है, या जब भी कोई बड़ा दिन है, जैसे अभी मम्मा का दिन आने वाला है, उसमें विशेष भोग बनेगा। तो माताएं जो कारोबार है, जिस प्रकार का कारोबार है, कभी 2 बजे आएंगी और घरों में रहती है, सेंटर पर तो एक माता रहती, बाकी तो अपने घरों में रहती, परंतु घर से आएंगी, अपना खुद ड्राइव करती है बहुत करके, तो 2 बजे 3 बजे जो भी टाइम हो फिर 4 बजे आकर योग भी करेंगे, फिर बीच में जाकर के फिर अपना और काम करके फिर क्लास में भी टाइम पर हाजिर होंगे। तो स्टूडेंट लाइफ का महत्व क्यों? उससे हमारी बुद्धि को न सिर्फ शक्ति मिलती परंतु साथ ही साथ नम्रता भावना भी रहती। मैं स्टूडेंट हूँ, अभी तक मुझे सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। गृहस्थी से स्टूडेंट बने तो स्टूडेंट से योगी बन सकते, नहीं तो आज तक कभी आपने सुना है कि गृहस्थी योगी बने? कहां भी नहीं सुना है। परंतु गृहस्थी पहले स्टूडेंट बने, फिर स्टूडेंट योगी बहुत अच्छी तरह से बन सकता, और यदि योगी बनते हैं फिर फरिश्ता। जो सच्चा सच्चा योगी है वो अपने हर कर्म के हिसाब किताब के बंधन से छूट करके फरिश्ता जरूर बन सकता। तो अपनी वृत्ति, अपनी स्मृति, सीखने की भावना सदा स्टूडेंट लाइफ रहे, और फिर साथ साथ सेवाधारी, बाबा के यज्ञ की किसी न किसी प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा मुझे सेवा करनी है। यदि हम अपनी सेवा भावना बना करके रखते हैं तो फिर हम, आप सोचो कि आपकी दृष्टि में ये कभी नहीं आएगा कि ये मेरा बेटा, मेरा पति आदात, बाबा ने मुझे सेवाधारी बना के रखा है, तो जहां पर मैं हूं वहां पर बाबा मेरे से सेवा अवश्य ही कराएंगे। उसमें आप सोचो कि जितने लोग आपके घर में आते हैं, कितने बच्चे आते, कितने संबंधी आते, कितने फ्रेंड्स आते, जब आप उन आत्माओं को देखते हो, क्या आप उस दृष्टि से देखते हो कि ये सब भगवान के बच्चे हैं और अब मुझे उनको ऐसे शांति का दान देना है, सेवा मनसा वाचा कर्मणा। तो मनसा से पहले ये भावना कि मुझे इन आत्माओं को विशेष बाबा की याद के शांति का दान देना है। क्यों? क्योंकि कई बारी जो संबंधी होते इतना सुनने के लिए तैयार नहीं होते, और पुरानी पुरानी भक्ति की बातें बुद्धि में बैठी है तो जब तक पूरा कोर्स नहीं करते तो ज्ञान में क्या बात है वो समझ नहीं पाते। तो इस कारण से पहले तो ये बात कि बस उनको मनसा द्वारा अच्छी भावना, अच्छी दृष्टि, अच्छी वृत्ति से उनके धरनी को ऐसा बनाओ जो वो आपके सहयोगी बन जाए। जब माताएं कहती है कि हमारा परिवार मुझे इतना सहयोग नहीं देता, तो मैं सोचती हूँ कि उसमें क्या उनको सजेस्ट करे, ताकि, क्योंकि ये तो मालूम है कि सभी ब्राह्मण नहीं बनेंगे, और हो सकता है कि हमारे परिवार वाले ब्राह्मण बन भी जाए, परंतु ये भी हो सकता कि ना भी बने, और यदि नहीं बनते हैं तो हर्जा नहीं है, परंतु कम से कम उनको हमारी चलन से इतनी प्रेरणा मिली हुई हो जो उनको रिस्पेक्ट रहे और उनको ये लगे कि जहां पर हम अभी जा रहे हैं उससे हमारी जीवन अच्छी बन रही है। तो एक तो आपकी मनसा सेवा से उनको ये भावना पैदा होंगी, और फिर साथ साथ आपके द्वारा उन्होंने कुछ परिवर्तन देखा हुआ होगा तो वो परिवर्तन देख करके कहेंगे कि हाँ, ये कुछ अच्छी जगह पर जा रहे हैं। यदि प्रैक्टिकल प्रूफ वो नहीं देखते तो फिर वो मान नहीं सकते, परंतु प्रैक्टिकल प्रूफ जब देखते हैं तो कहेंगे कि हाँ, हमको भी साथ ले चलो, या वो भी फिर सहयोगी तो बन जाएंगे। योगी शायद पीछे बने परंतु पहले सहयोगी तो बन ही जाएंगे। तो हमारी दृष्टि में जो भी हमारे सामने आए, जितने भी आए, दो आए, पांच आए, दस आए, परंतु सबके प्रति ये हमारी गुड वाइब्रेशंस अपनी दृष्टि से उन्हों तक पहुंचती रहे कि इन आत्माओं को भी कुछ प्राप्ति हो। आप देखेंगे कि बाकी तो सभी लोग संसार में जहां भी जाते हैं कुछ उन्हों को उनसे लेना होता है हर एक के लिए, और बाबा के बच्चे जहां रहते हैं जहां जाते हैं हर एक को फीलिंग आनी चाहिए कि इनसे हमें कुछ मिल रहा है। तो आप अपनी ऐसे दृष्टि रखो उन आत्माओं के प्रति, सभी के प्रति, परंतु खास जो हमारे नजदीक वाले हैं उन्हों को आपके दृष्टि से कुछ पॉजिटिव फीलिंग भी आए, आपकी दृष्टि से उन्हों को वो शक्ति का अनुभव हो, आपकी दृष्टि द्वारा उन्हों को कुछ सत्यता का अनुभव हो, कुछ प्रेम का अनुभव हो, शांति का अनुभव हो, ये सब कुछ अपनी दृष्टि से होता। तो यदि हम अपनी आत्मा को इतना भरपूर रखते तो फिर ये सब जो बातें मैंने बताई उन द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा हम कर सकते। तो हमारी दृष्टि ही बहुत सेवा कर सकती। दादी गुलजार से हम लोगों ने पूछा था कि बचपन की कहानियां कुछ सुनाए, तो बहुत समय पहले कहा कि जब हम कराची में थे और हम क्लास में बैठे थे, मैं पीछे जाकर के बैठी क्योंकि मैं सबके बाद में आई, तो मैं उस दिन पीछे थोड़ा बैठी थी। तो मम्मा ने कुछ ज्ञान का प्रश्न पूछा, फिर कहा कि जिसको भी पूछना है भले पूछे। तो दादी गुलजार तो उस समय बहुत छोटी थी, 12-13 साल की थी ऐसे कुछ, तो उसने हाथ खड़ा किया और मम्मा को उत्तर देने चाहती थी, तो मम्मा देख रही थी, तो फिर उसने उत्तर दिया और वो राइट उत्तर था। तो पीछे बैठी थी तो मामा पहले देख नहीं पाई, और फिर मामा ने कहा कि हाँ बच्ची राइट। फिर जब वो मामा के सामने आई तो मामा ने उसको बताया कि तुम्हारी आंखें और तुम्हारा मुख बहुत सेवा करेगा। तो ये 30s की बात, और आज वो हम देखते हैं कि कैसे बाबा दादी के दृष्टि द्वारा, बाबा दादी के मुख द्वारा बहुत सेवा कर रही हैं। परंतु बाबा कहते हैं कि आप सब मेरे साथी बच्चे हो, तो हमारी दृष्टि में इतनी शक्ति हो जो और आत्माओं को हम बाबा की फीलिंग दे सके, दिला सके। और यदि हमने इस प्रकार से ध्यान रखा हुआ होगा तो आप सोचो आपके कर्म किस प्रकार से होंगे। कुछ भी वेस्ट नहीं परंतु बेस्ट, जो अव्यक्त बाबा ने थोड़े दिन पहले कहा था कि हर चीज को बेस्ट में लगा लो और हर चीज को आप अच्छी तरह से यूज करो। तो ये आप सोचो कि हमारी वृत्ति, हमारी स्मृति, हमारी दृष्टि, हमारी कृति बेस्ट होती जा रही है, और जितना आंतरिक सूक्ष्म वो चेकिंग चलती रहेंगी इतना हम उसको श्रेष्ठ और ऊंचा बना सकेंगे। और फिर आपके द्वारा बाबा को जो बहुत बड़ा कार्य करना है विश्व में प्रत्यक्षता का अथवा स्वर्ग के द्वार खोलने का, बाबा फिर वो कार्य कर सकेंगे। क्यों नहीं वो कार्य अब तक हुआ है? एक ही कारण ये कि हम बच्चे तैयार नहीं। नहीं तो और बाकी सब तैयारियां लगी हुई है। संसार के हालतें तो मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, तो सब कुछ तैयार है, सिर्फ जैसे बाबा ने उस दिन कहा कि अभी तक मूर्ति पर्दे के पीछे छिपी हुई है, अभी तक मूर्ति पूर्ण रीति से तैयार नहीं है। तो माताओं के लिए खास यही मेरी शुभ भावना है कि शायद आपको भाइयों से ज्यादा कुछ टाइम मिलता होगा। वैसे तो कई कहते हैं कि दिन भर सारा घर का कारोबार चलता, परंतु थोड़ा भी समय अपने लिए भी निकाल देते तो फिर उसको भी हम सफल बना सकते। तो माताओं को तो विश्व का कल्याण करना है। बाबा ने 1965 से लेकर 1969 तक बाबा पांडव भवन के दीवार से बाहर नहीं गए, और पांडव भवन तो उस समय से भी छोटा था, परंतु बाबा बाहर नहीं गए, परंतु बाबा ने विश्व की सेवा की है। तो मैं क्यों ये बता रही, क्योंकि माताएं कहेंगी कि हम विश्व में कब जाएंगे, परंतु नहीं, बाबा ने एक स्थान पर बैठ करके सारे विश्व की सेवा की। तो हम बच्चों को भी अभी बाबा यही कह रही हैं कि आप अपना ऐसा सब कुछ बना लो जिसमें आपकी सब चीजें बेस्ट रहे, आपकी आंतरिक स्थिति और आपका बाहर का कारोबार बहुत सुंदर रीति से चल सके, और उससे ही बाबा की प्रत्यक्षता होंगी। एक अच्छा बनता वो तो उसका भाग्य, परंतु जब संगठित रूप में हर आत्मा बहुत अच्छे से अच्छी बनती तो फिर तो कहेंगे कि हाँ यही भगवान का काम है, और कोई मनुष्य काम नहीं कर सकता था, भगवान ही ये काम कर सकता। ठीक है,
तुमको आना है शिव पिता को।
आप बहुत अच्छे टाइम पर आए हैं मधुबन, जब सब दादियां आपसे मिलेंगी और आपको भरपूर करके और विश्व के कल्याण के लिए और शक्ति भरेंगी। ओम शांति।